किसी भी कार्यक्रम का सुचारू रूप से आगे बढ़ना, विधिवत उसका उद्घाटन करना, ये तो हमने कर लिया। लेकिन कोई भी कार्यक्रम सही अर्थों में पूरा तब होता है जब उसमें बड़ों के आशीर्वचनों का भी लाभ मिलता है। क्योंकि जैसे नदियों में गंगा का महत्व होता है, फलों में नारियल का महत्व होता है, ऐसे ही किसी कार्यक्रम में अपने वरिष्ठों के भी आशीर्वचन का उतना ही महत्व होता है। तो अभी हम सभी वरदानी बोलों से अपनी झोली भरेंगे, दादी रतन मोहिनी जी के वरदानी बोलों से। आप इस विश्वविद्यालय के शुरुआत से ही इसके साथ जुड़े हुए, 1936-37 में इसकी स्थापना हुई है और तब से ही आप इसके साथ जुड़कर बाबा जो साकार फाउंडर रहे इसके, इस विश्वविद्यालय के, उनकी अंग संग रहकर उनकी पालना लेते हुए इस ज्ञान को जीवन में कूट कूट कर भरा है और इतना कूट कूट कर भरा है कि आपके मुखारविंद से हमेशा ही ज्ञान के रतन झड़ते रहते हैं, जिसके कारण ही आपका प्यारा सा नाम है दादी रतन मोहिनी जी। आप हमारे तीनों ही कैंपस जो है इस समय शांतिवन, ज्ञान सरोवर और ये पांडव भवन, इन तीनों ही कैंपस की एक्टिविटीज को आप चलाती हैं, देखती हैं ध्यान से, आपके मार्गदर्शन में ही ये चलती हैं। और आप हमारे इस कैंपस में, इस न सिर्फ इस कैंपस में लेकिन हमारे विद्यालय की जितनी भी राजयोग टीचर्स बहने हैं उन सब की जो ट्रेनिंग होती है उसकी भी आप डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ हमारा जो राजस्थान जोन है वहां की भी आप डायरेक्टर हैं, और हमारा जो युवा वर्ग है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। और युवा वर्ग में आपको चेयरपर्सन इसीलिए बनाया गया क्योंकि दादी इतनी बड़ी होते हुए भी, आज 85 से भी ज्यादा उम्र है लेकिन आज भी युवाओं की तरह एकदम एक्टिव रहती है, इसलिए हम दादी जी को प्यार से कहते हमारी युवा दादी जी। तो ऐसी हमारी युवा दादी जी से, जिन्होंने देश विदेश में भ्रमण करके बाबा का संदेश, परमात्मा का संदेश सब तक पहुंचाया है, काफी सारे सेंटरों को खोलने के लिए निमित्त बने हैं, उनसे अभी हम निवेदन करते हैं कि हम सबके प्रति आशीर्वचन उच्चारण करें और हम सभी अपनी झोली भरें।
ओम शांति। आप सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बड़ा ढीला ढीला बस, संगठन बड़ा है। ओम शांति। कहां से आ गया आवाज? सर्वशक्तिवान, सर्व की दुख हरता, सुख करता परमात्मा पिता की प्यारी संतान, भाग्यशाली आत्माएं, आप सबको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखकर हमें बड़ा हर्ष है कि आखिर वह दिन आया जो हर तरफ से, भले ही संख्या कितनी भी है फिर भी ऐसा ही कहें, अपने बाप के द्वारा स्थापन किए हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के पहुंचे हैं। किस लिए? यह तो हम सब मानते हैं। पहले तो आप सबका स्वागत सभी ने किया भी है और हम भी आप सबका यहाँ आने से बहुत 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 खुशी से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय जहां आप पहुंचे हैं, और मैं समझती हूं भले ही यहां आना साधारण लगता है, परंतु अगर कोई इस बात को ध्यान से सोचे, नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, मैं समझती हूं दुनिया भर में ऐसा है कोई नाम कोई स्कूल का या यूनिवर्सिटी का। एक तरफ ब्रह्मा कुमारी, दूसरा साथ ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वरी विश्वविद्यालय अर्थात ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ विद्यालय। ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सबका आना, मैं समझती हूं ये बड़ी भाग्य की बात है। क्यों मैं भाग्य कह रही हूं? वैसे तो आप सब ईश्वर पिता को मानते हैं, मानते हैं ना? सभी मानते हैं, मानते हैं, कोई भी हां नहीं कहता है, हाथ उठाएं, मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि हम सब ईश्वर पिता की संतान हैं, मानते हैं। तो यह हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय भी है, साथ साथ यह हमारा ईश्वरी परिवार भी है। भले ही ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से आप आए हैं, और उसी रीति से यहां ईश्वर पिता की नॉलेज अर्थात परमात्मा पिता से जो हम सब चाहते हैं, जब कोई दुखी होता है तो शांति की मांग करता है, जब किसको कोई ऐसी इच्छा मनोकामना होती है और पूरी नहीं होती है तो भी भगवान को याद करते हैं। तो हर प्रकार से जब अति दुखी होता है तो भी शांति के लिए अथवा सुख के लिए ईश्वर को याद करते हैं। तो ऐसे ईश्वर पिता जिससे हम हर प्रकार से अपने को जो भी इच्छा है पूर्ण करने के लिए याद करते हैं, परंतु हम पूछें कि बरोबर वो इच्छा हमारी यथारत पूरी होती है? यूं तो भगवान का कहना ही है, जो मुझे बड़े प्रेम से भावना से याद करता है उसको मैं भावना का भाड़ा देता जरूर हूं, परंतु वो सदाकाल मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। है कोई ऐसा जिसको ऐसा अनुभव हो? तो यह हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जिसमें हमारा संबंध, क्योंकि जब हमारा बाप है पिता मानते हैं, तो एक तरफ विद्यालय है और साथ साथ ये हमारा ईश्वरी परिवार के नाते ये हमारा अपना घर, घर माना रहने का स्थान, पिता और पुत्र का संबंध, हमारा परमात्मा पिता से संबंध जुटा रहे। जब हम कहते हैं वो हमारा बाप है, बाप के ऊपर बच्चों का अधिकार है, बाप को बच्चों पर तरस रहता ही है, बाप सदा चाहता है मेरे बच्चे लायक बने, ऐसे ही हम सर्व मनुष्य आत्माएं, यहां हमें पहली शिक्षा मैंने जो कहा ये हमारा ईश्वरी परिवार है, इसलिए हमें पहली ये शिक्षा मिलती है कि हम सब जब मानते हैं एक पिता परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा के साथ मेरा बाप और बच्चे का संबंध किस प्रकार से जुटा हुआ है। मान्यता अनादि है और उसको हम सत्य रूप से माना दिल से मानते हैं, परंतु यथार्थ जानते नहीं, जिस कारण वास्तव में हमारा संबंध अथवा जो योग कहते हैं मन की लगन अपने परमात्मा पिता से लगी रहे, चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न करते भी नहीं लगी रहती। तो यहाँ पहले हम सबको यही परिचय मिलता है, जिस कारण मैंने कहा ये हम एक हमारा परिवार है। परिवार के नाते परमात्मा से संबंध वास्तव में मुझ आत्मा का है, क्यों शरीर को चलाने वाली आत्मा है। परमात्मा पिता अविनाशी है और मैं आत्मा, आत्मा अविनाशी है या विनाशी? आत्मा मरती है, आत्मा जलती है, आत्मा डूबती है, परंतु इस बात को समझते हुए भी हम यथार्थ जानते नहीं और अपने को जो शरीर धारण किया है, शरीर का नाम और शरीर का रूप, क्योंकि कर्म इस शरीर से करते हैं, जानकारी इस शरीर के नाम से देते हैं, तो ये शरीर के नाम रूप के होने के कारण वो हमें पक्का है। और उस संबंध से जब आपस में मिलते हैं, कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, जिस कारण हमारा मन बुद्धि का संबंध आत्मा का संबंध, क्यों मैं आत्मा ही यथार्थ रूप में मन बुद्धि सहित हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, मान्यता मैं परमात्मा की संतान हूँ, अंदर की आत्मा मानती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। मानते हैं सब आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय, और उस निश्चय से शरीर से काम कराने वाला समझ करके और हम कराते रहें, ऐसा अभ्यास हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब भाग्यशाली आत्माएं, क्योंकि आत्माओं का हम जो परमात्मा पिता की संतान है, यहाँ हमें वह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नॉलेज मिलती है, जिससे हम अपने परमात्मा पिता के साथ संबंध जुटा करके, क्योंकि वास्तव में संबंध अर्थात स्नेह का बंधन, तो हमारा स्नेह परमात्मा से बना रहे। और हम जानते हैं जो भी हमारे शरीर के माँ बाप जो भी कुछ हम देखते हैं, ये सब थोड़े समय के लिए, वो तो देखते हैं जब समय अनुसार शरीर अपना या अपने संबंधियों का, माता पिता किसका भी जाता है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह ईश्वरी विश्वविद्यालय जो वास्तव में ईश्वर पिता ने आकर के हम बच्चों के लिए स्थापन किया है, इसलिए कि अब जो मेरे बच्चे याद करते हैं, मानते हैं, परंतु मानते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति में साधन करते हुए भी पूर्ण रूप से प्राप्ति न होने के कारण, जो परमात्मा पिता से संबंध जुटा करके जीवन में सुख शांति का सदाकाल का अनुभव होना चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा मैं कौन हूँ और मेरा परमात्मा पिता से जो संबंध, जो हम कहते हैं ना, ये यहाँ सहज राज योग आपको सिखाया गया, आप राजयोग शिविर में आए हैं। तो योग अर्थात मन की याद, अर्थात योग अर्थात आत्मा का संबंध। मन बुद्धि अपने परमात्मा पिता में लगा रहे, एकाग्र रहे, तो परमात्मा की जो शिक्षा हमें है अथवा हम मानते हैं, परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। मैं आत्मा भी वास्तव में सत्य हूँ, अविनाशी हूँ। मैं अपने उस सत्य अविनाशी रूप को पहचान करके अपने अंदर सत्यता की शक्ति, और अविनाशी हूँ क्योंकि सदा शुद्ध और पवित्र, इसलिए फिर से मैं जीवन में रहते, शरीर में होते, शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हुए भी स्वयं को शुद्ध रख सकूं, स्वयं के अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत करूं। यह शिक्षा हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता से मिलती है, जिससे हमारे मन की अशांति और साथ में मन की एकाग्रता, एक पिता के साथ आत्मा का संबंध जुटा रहे। और जो पिता का हम बच्चों के लिए फरमान है, शिक्षा है, उन शिक्षाओं को हम जीवन में समझते हुए कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति नहीं। और दुनिया में रहते जो भी कर्म करते हैं, जैसा संग वैसा रंग, लेकिन इस संग में रहते भी हम अपने पिता के फरमान अनुसार अपन को चला सकें, और उसमें चल करके ऐसी दुखमय दुनिया में रहते भी शांति और आनंद का अनुभव कर सकें, यह शिक्षा यहाँ पहले पहले मिलती है। और उस शिक्षा का जीवन में अनुभव करने के लिए यह सहज राज योग, जो जो नॉलेज मिली, समझ में तो आ जाती, पर जो समझ में आई वो हमारे अंदर एक विश्वास में आ जाए, और उस विश्वास से हम अपने को ये अनुभव कर सकें, मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर इस सृष्टि मंच पर अपना कार्य करने के लिए आई, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा गुप्त है, लेकिन कर्म इंद्रियों रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, कर्म ये कर्म इंद्रियां करती है, लेकिन कराने वाली मैं आत्मा हूँ। और जो भी कर्म इन कर्म इंद्रियों से मैं कराती हूँ, उन कर्मों का खाता भोगना किसको पड़ता है? सुख दुख का अनुभव कौन करता है, शरीर या आत्मा? सोचो क्या जवाब देंगे। तो जब सोचेंगे तो विवेक क्या कहेगा, सुख दुख का अनुभव करने वाली कौन, बोलो, आत्मा है ना। तो जब आत्मा ही सुख दुख का अनुभव कर, क्योंकि कराने वाली भी वो है और कराती है, तो उसका जो कर्मों का खाता बनता है, शरीर तो भस्म हो जाता है ना, भस्म हो जाता है ना, लेकिन आत्मा जो अविनाशी है, जो आत्मा चेतन है, उनकी चेतनता मन बुद्धि और जो कर्मों के खाते अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं, जिस कारण जो भी सुख दुख की फीलिंग आत्मा में आती है, तब आत्मा कहती है, हे भगवान, हे परमात्मा पिता, हमें शांति दो, इस दुख से छुड़ाओ, तो उसको भक्ति, भक्ति भी भगवान से प्रेम है, परंतु वो प्रेम जो हमें उनकी याद बनी रहे, उनकी शिक्षाओं पर हम स्वयं को चला सकें, और ऐसा उनके याद जैसे बाप हमारा शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जैसा बाप वैसा ही बच्चे। ये जो गायन है ये अनादि परमात्मा ने हमें उस रूप में इस सृष्टि पर भेजा, लेकिन हम न जानने के कारण आज जो अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हम दुख अशांति का अनुभव करते हैं, और आज देखो सारी दुनिया के अंदर शांति चाहिए चाहिए चाहिए, और शांति के लिए कैसे कभी कभी आपस में सम्मेलन करके कोशिश करते हैं, कई नियम भी बनाते हैं, परंतु कहाँ चल पाते हैं, क्योंकि दिन प्रति दिन जितने ही प्रयत्न उतने ही और भी रिजल्ट बढ़ती जाती है। अब आखिर जब अति होती है तो निश्चित है ना, अति का अंत तो होगा या नहीं होगा, होगा होगा। अभी कलयुग है, कलयुग का अंत है ना, कलयुग अंत के बाद सृष्टि चक्र में क्या होगा, कुछ होगा या जन्म ही हो जाएंगी। ये सृष्टि का चक्कर, चार युग जो गाए हुए है, सत्युग, त्रेता, द्वापर कलयुग, कलयुग के अंत में भगवान के महावाक्य, जब जब धर्म की अति गिलानी है, मैं स्वयं गुप्त रूप में अति साधारण रूप में फिर से आकर के इसी दुनिया में वही आदि सनातन सत्य धर्म के स्थापना का कार्य कराता हूँ, पर गुप्त रूप में। यह वही गुप्त रूप है जिसकी हम लोगों ने शुरू से नॉलेज ली है और इसका प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया है। सुना ना, 37 से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन हुआ है। शुरू में ये नाम नहीं था, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आते हैं। आगे के सत्रों में आपको इसकी स्पष्ट रूप से सारी नॉलेज मिलेंगी, परंतु पहले आत्मा का ज्ञान, स्वयं की पहचान, और फिर योग का आपको विधि बताई और उसका प्रयोग कराया जाएगा। जब ये बात समझ में आ जाती है, परमात्मा पिता का यथारथ परिचय, भगवान ऊंचे ते ऊंचा है मानते हैं, मानते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे तेरे काम, कौन सा ऊंचे ते ऊंचा काम, यही ऊंचे ते ऊंचा काम जो कोई नहीं कर सकता है, नई सृष्टि का रचता, स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग बनेगा कैसे, ऐसे तो नहीं अचानक से बन जाएगा, तो स्वर्ग कैसे बनता है, स्वर्ग बनाने वाला सदा सुखमय दुनिया, जहाँ दुख का नाम निशान न हो, ऐसी दुनिया बनाने वाला सर्वशक्तिवान, नई विश्व का रचयिता परमपिता परमात्मा, जो अपना भी कार्य करा चुका है और वो गुप्त रूप में चल रहा है। जब वो नॉलेज अब स्पष्ट हो गई, हम लोग उसका जीवन में अनुभव कर चुके, आज हमारी प्लेटिनियम जुबली चल रही है, तो कितने वर्ष हो गए गुप्त रीति से कार्य चलता आया, और जब वो कार्य अभी विस्तार में आ गया है, नॉलेज बड़ी स्पष्ट है, जीवन का अनुभव है, अनुभवी जीवन प्रत्यक्ष है, तो अभी आप सबको बुलाया गया है, और भाग्यशाली जो आप आके पहुंचे हैं, परंतु इसमें जैसे आपको दिनचर्या बताई गई है, अगर पूरी रीति से नियम से विधि पूर्वक और उन्हीं भावनाओं से आप उसको अटेन करते रहेंगे, ध्यान देंगे, इसमें केवल एक बात का ध्यान, यहाँ और कोई भी दुनिया की बातें आपस में नहीं करना। कईयों को होता है ना रोज का समाचार, क्या है आज दुनिया में, अभी वाला समाचार सुनेंगे करेंगे क्या, यहाँ तो अभी पढ़ने के लिए आए हैं, कम से कम ये 3 दिन जो भी सुनो जो भी पढ़ो उसमें ही उसको अच्छी समझ में तो सहज आ जाएगा, क्योंकि आजकल साइंस ने ऐसी ऐसी नॉलेजेस इतनी जो बुद्धि भरी विशाल कर दी है, विशाल बुद्धि से नॉलेज को समझना सहज है, पर समझ करके दिल से उसको यथारत मानकर और फिर उसका अभ्यास करें, उस और कोई बातों का चिंतन, ये हो गया अभी यहाँ बैठे हो कुछ याद करो अभी क्या होता होगा, फोन करके बातें करें, ये 3 दिन समझो हम दुनिया से दूर है। अगर इस प्रकार अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा अनुभव होगा, और वो आपको आगे के लिए फिर वो अभ्यास अपना कायम करते रहेंगे, उसके अंदर मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धता और अपने चिंतन की शक्ति में, विचारों में शुद्धता, ऐसी जितना जितना हमारा परमात्मा पिता से संबंध जुड़ता जाएगा, हमारी बुद्धि ऐसी शुद्ध, जो भी विचार करो यथारथ विचार जो हमें प्रत्यक्ष फल देता रहेगा, ऐसी बातें अभ्यास करने से आपको आएंगी। और कैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, पिता श्री ब्रह्मा को कैसे परमात्मा पिता ने साक्षात्कार कराया और उनके द्वारा इस यज्ञ की स्थापना करा के आज वो यज्ञ फलता फूलता, ये सारे विश्व के अंदर इनकी ब्रांचेस हैं, और विदेशी भी आकर के अभी भी आए हुए हैं काफी कुछ, जो हमारे मधुबन कॉम्प्लेक्स में रहे हुए हैं, वो भी कैसे अभी इन बातों को मान करके अपनी जीवन में क्या क्या अनुभव कर रहे हैं, मैं समझती हूँ इसमें एक दो को कभी बुला करके आपको सुना लेंगे तो आप भी अनुभव करेंगे, तो उसमें आप अनुभवी बनकर, समय आ चुका कलयुग का अंत है, अंत का गायन है श्रोमणि भगवत गीता में, है ना, जब जब धर्म की अति गिलानी, मैं गुप्त रूप में साधारण रूप में आता हूँ और अधर्म विनाश सत धर्म की स्थापना। अब आदि सनातन सत धर्म सत्यता, जो मेरा मैं आत्मा सत्य हूँ, सत्य होकर के सत्य को जानना, सत्यता की शक्ति जागृत करना और उस सत्यता की शक्ति से अपने जीवन के अंदर सुख शांति का अनुभव करके औरों को भी ऐसे बनाना, यह इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की नॉलेज है। और इस नॉलेज को जैसे जैसे हम ग्रहण करते जाते हैं, हम भी इतने वर्षों से इस बात का अनुभव करते आए हैं और बाप का यही हमें फरमान है, अब सबको ये संदेश दो, अब स्वर्ग जो हमारा भारत था फिर से भारत स्वर्ग बनेगा जरूर, और स्वर्ग में आने का अधिकार परमात्मा पिता अभी हम बच्चों को देना चाहते हैं, जो स्वयं को पहचान, बाप से दिल का संबंध जोड़ेंगे, वह स्वर्ग में आने का अधिकार प्राप्त करेंगे। ऐसी आप सबके प्रति शुभ भावना है। चलेंगे ना स्वर्ग में? चलेंगे चलेंगे, मुश्किल नहीं है, बड़ा सहज है। हर बात मन के अंदर अगर समझ में आ जाती है, और मन ये प्रमाण है, मन एकाग्र हो जाए, एक परमात्मा में लगे, परमात्मा के आनंद का, परमात्मा के प्यार का अनुभव करे, तो फिर उसे और क्या चाहिए। भगवान सब कुछ देने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ बांध करके बैठ जाएंगे। शरीर है, कर्म इंद्रिया है, कर्म भी सब करेंगे। कर्म करते हुए मन के अंदर ईश्वर की याद और उनके शिक्षाओं से हम अपने कर्म ऐसे करें जो हमारे से कोई पाप कर्म न हो, जिससे हम भी दुखी हो और हम दूसरे को भी दुखी करें। ऐसी शिक्षा हमें यहाँ मिलती है, और ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में अर्थात बाप के घर में आप आए हैं, जहाँ हम सब आपको उसी नजर से देखते हैं कि आप सब हमारे भाई बहने जो बिछड़ गए थे, भले अभी तो भिन्न भिन्न स्वरूप में है, कोई किसको जानते पहचानते नहीं है, परंतु हम आत्मा है, परमात्मा की संतान आप भी मानते हैं, हम भी जानते हैं। और वो जान करके अगर हम समझ लेंगे, तो फिर पिता से हम वही अपने स्वर्ग की दुनिया का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद रखूं आप सब स्वर्ग में चलने की इच्छा रखते हो और उसके लिए प्रयत्न करेंगे, बरोबर करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो अभी हम फिर से 2 मिनट के लिए इसी बात को याद करते हुए, और ये बताया यहाँ आपस में और कोई दुनिया की बातें नहीं करना। मैं समझती हूँ शिलो बहन ने भी कहा अभी अपने उन्हों को बता दो, हम सब ठीक यहाँ आराम से पहुँच गए हैं और 3-4 दिन शांति से यहाँ हम रहेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बीच में बातचीत करने का वास्तव में जरूर नहीं है। अगर इस प्रकार नियम रख के जो सुनते हो उसकी आपस में चर्चा, उन्हीं बातों पर विचार करना, जो भी योग का अभ्यास, वो अभ्यास करते हुए उसका अनुभव करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग में आने के अधिकारी बन जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ फिर से आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं। मन के अंदर केवल यही याद रखें, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस शरीर को धारण कर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं, यह शरीर 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है। मैं सब प्रकृति की मालिक, इससे न्यारी, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान, परमात्मा शांति के सागर, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप। परमात्मा पिता प्रेम के सागर, मैं उनकी संतान आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। सर्व के सुखदाता परमात्मा पिता, मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूं। मैं शुद्ध आत्मा इस प्रकृति के पांच तत्वों से परे परम धाम में रहने वाली, जहां परम पिता परमात्मा का निवास है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा उनका निवास स्थान। जब मैं आत्मा शरीर से परे उदाहरण नहीं कर किया है, तो मैं भी अपने पिता के साथ उस ऊंचे ते ऊंचे परम धाम शांति धाम में निवास करती। ऐसे शांति धाम की रहने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने के लिए इस शरीर को धारण कर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही, कर्म कराने वाली, पाठ बजाने वाली, इससे न्यारी मैं शुद्ध आत्मा। सर्वशक्तिमान शांति के सागर पिता की संतान, ऐसी स्मृति से एक ही इस शुद्ध संकल्प में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए शांति और प्रेम का अनुभव करती।